मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो वनों पर एक रिपोर्ट जारी की है उस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले दो खबरों को देख लेते हैं। इनमें से एक खबर कौन सी होगी, शायद आप अनुमान लगा रहे होंगे और सही ही अनुमान लगा रहे होंगे, जो आज की मुख्य खबर है अखबारों की दृष्टि से। दोस्तों, आपने अखबारों में पढ़ा है कि राहुल गांधी जी को बकायदे सूरत के एक कोर्ट ने मानहानि के मुकदमे के संदर्भ में 2 वर्ष की सजा सुनाई है। सन 2019 में जब चुनाव हो रहे थे उस समय उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, उसके बारे में फिर कोर्ट में केस दर्ज किया गया और उसमें फिर राहुल गांधी जी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है। यह एक घटना है। डेफिनेटली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस घटना के बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो फिर क्या पूछा जाएगा? क्या यह घटना यूं ही है, आपके किसी काम की नहीं है? नहीं, यहां थोड़ा आपको समझना होगा। यह घटना आपके काम की है, लेकिन एक दूसरे रूप में काम की है। यह घटना काम की नहीं है, इस घटना से जुड़े हुए जो सवाल हैं वे काम के हैं। पहली बात, देखिए, मोदी सरनेम को लेकर के टिप्पणी की गई, एक अभद्र टिप्पणी की गई, मानहानि से संबंधित टिप्पणी की गई। तो यहां जो आपका 4th पेपर है, क्या उसके लिए आपको कोई सामग्री नहीं मिल रही है? ये अभद्र टिप्पणी के ऊपर ही है। यानी कि हमें अपने भाषा में हमेशा संयम बरतना चाहिए, शिष्टाचार का प्रमाण देना चाहिए। यहां तक कि हम अगर किसी की तीखी आलोचना भी करने जा रहे हैं तो उसमें शालीनता का पुट बना रहना चाहिए। यानी कि मेंस में यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे और आपको इस तरह के उत्तर लिखने की कोई गुंजाइश दिखाई देती है तो आपको चाहिए कि आप इस घटना को उसमें शामिल कर लें इस रूप में। दूसरी बात, अखबारों में आपने आज पढ़ा होगा और इसको लेकर के डेफिनेटली एडिटोरियल कमेंट्स भी आगे आएंगे और वो होंगे जनप्रतिनिधि अधिनियम को लेकर। जनप्रतिनिधि अधिनियम आपके सिलेबस में इसी नाम से है और बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये, इस पर सीधे सीधे मेंस में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम की जो धारा 8 है ब्रैकेट 3, उसमें एक व्यवस्था की गई है और व्यवस्था ये की गई है कि यदि किसी भी जनप्रतिनिधि को, देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, तो जनप्रतिनिधि को किसी आपराधिक मामले के अंतर्गत 2 साल या उससे अधिक की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर, मामला आपराधिक हो तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। राहुल गांधी जी को जो सजा दी गई है वो 2 साल की है, यानी कि उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहां एक तथ्य और है, सजा सुनाने के दौरान ही कोर्ट ने बकायदे उन्हें 30 दिन की मोहलत दी है कि यदि वे चाहें तो बकायदे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ वो अपील कर सकते हैं और अपनी सजा को रोकने की मांग कर सकते हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी जाएंगे ऐसा लगता है, और यदि हाई कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट है, उसने जो अभी सजा सुनाई है उस पर रोक लगा दी, यानी कि उसके निर्णय पर रोक लगा दी, तो सीधी सी बात है कि मामला रुक जाएगा और उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी क्योंकि मामला अभी सुनवाई में है। तो ये इसकी व्यवस्था है, वर्तमान घटना की व्यवस्था है। तो यहां जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो ये कि एक बार आप जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसे थोड़े अच्छे तरीके से देख लें। इससे क्या होगा कि यदि कोई दूसरा प्रश्न भी उससे जुड़ा हुआ आया तो आप बड़े आराम से उसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो प्रकृति है वो थोड़ी सी अब जटिल सी होती जा रही है। दोस्तों, जो दूसरी एक बड़ी खबर है, आज की नहीं है, 2-3 दिन पहले की खबर है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो राजस्थान की जो विधानसभा है उसने राइट टू हेल्थ बिल पारित किया है। राइट टू हेल्थ बिल यानी कि आप कह लीजिए स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित किया है, स्वास्थ्य अधिकार विधेयक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है आप कह लीजिए। इस रूप में है कि आप देखिए कि स्वास्थ्य को लेकर के लगातार बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है ही, इसके अतिरिक्त राज्यों की भी अपने स्वास्थ्य संबंधी योजना है, बीमा योजना भी है जो सरकार भी कराती है लोगों के लिए, कई तरह की इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो फिर राजस्थान को इस तरह की योजना लाने की जरूरत क्या थी, ये एक सवाल उठ रहा है। इसका जवाब क्या है? इसका जो जवाब है, जो एक सटीक जवाब हो सकता है, वो ये है कि बहुत सारे स्वास्थ्य योजनाएं हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब हम स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आते हैं तो सामान्य तौर पर यह पाया गया है कि स्वास्थ्य पर जितना खर्च होता है उसके केवल आधे की ही भरपाई हो पाती है। यानी कि जो लगभग लगभग 50% हिस्सा है वो हमारे अपने पॉकेट से जाता है, जिसे आउट ऑफ पॉकेट कहते हैं आप, OOP, आउट ऑफ पॉकेट। इसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं चाहूंगा कि आप इस डेटा को नोट कर लें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि सन 2019 में एक भारतीय अगर अपने स्वास्थ्य का इलाज कराता है तो आउट ऑफ पॉकेट जो उसका खर्च था वो उसके टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 55% था। यानी कि अगर उसे 100 रुपये खर्च करना पड़ता है तो 55 रुपये उसे अपने पॉकेट से देने होते थे, यानी यूं कह लीजिए कि 45 रुपये की ही भरपाई होती थी। जबकि जो वैश्विक एवरेज है वो 18% का है, वैश्विक एवरेज 18% का और हमारे यहाँ 55% का, तो बहुत ज़्यादा है। जबकि हमारे यहाँ की जो ज़्यादा बड़ी संख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। इसीलिए एक अध्ययनों में पाया गया है कि जो गरीबी रेखा से बिल्कुल थोड़े से ऊपर है, यदि उनके यहाँ का कोई भी मेंबर बीमार पड़ जाता है तो तुरंत गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, क्योंकि अब वो कमाई नहीं कर सकता कि बीमार पड़ गया है, और दूसरा ये है कि उसकी जो थोड़ी बहुत बचत है वो अब बीमारी में खत्म हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जब भारत के बारे में बात होती है कि कैसे ये अपनी स्थिति को बेहतर करे, तो हमेशा दो क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा जोर देने की बात कही जाती है, पहला ये है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार ने ये जो कदम उठाया है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और शायद उनके द्वारा उठाया गया ये कदम दूसरे राज्यों को भी इसके लिए प्रेरित करे। दोस्तों, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, और वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जो विश्व के वनों की स्थिति के ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आप जानते हैं 21 मार्च को मनाया जाता है, उसी अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह रिपोर्ट जारी की है। बहुत सारे जो आंकड़े हैं मैं उन आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं, जानबूझकर नहीं जा रहा हूं। आपको मालूम है कि जो पर्यावरण है आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, और प्री में भी इस पर काफी क्वेश्चन आने लगे हैं। मैं अभी जो बातें आपसे करने जा रहा हूं उसमें प्री के लिए तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होनी ही चाहिए, मुख्य परीक्षा में तो इसका बहुत बड़ा रोल है ही। जो सबसे बड़ी बात रिपोर्ट में कही गई है वो ये है कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर जंगलों का नामो निशान मिट जा रहा है। 1 करोड़ हेक्टेयर, सोच करके देखिए, यानी कि 2.5 करोड़ एकड़ जंगल बिल्कुल साफ हो जा रहे हैं। ये तो 1 करोड़ हेक्टेयर इस रूप में साफ हो रहे हैं, और सोच करके देखिए कि जो 3.5 करोड़ हेक्टेयर जो जंगल हैं उन्हें बर्बाद करने का श्रेय जाता है, श्रेय शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि करना नहीं चाहिए, कीड़े मकोड़ों को। कीड़े मकोड़े 3.5 करोड़ हेक्टेयर जंगल को नष्ट कर दे रहे हैं, सोच करके देखिए, यानी कि 4.5 करोड़ हेक्टेयर जंगल नष्ट हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और मुझे लगता है कि ये डेटा आपके दिमाग में रहना चाहिए, अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण डेटा है। देखिए, जब हम कहते हैं जंगल नष्ट हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जंगल नष्ट हो रहे हैं का ये मतलब नहीं हुआ कि केवल पेड़ खत्म हो रहे हैं। क्या जंगलों का सीधा संबंध जैव विविधता से है? बिल्कुल जैव विविधता से है। क्या जंगलों का संबंध वातावरण के प्रदूषण से है? आप जानते हैं है। क्या इसका संबंध बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग से है? आप कहेंगे कि हाँ, उससे भी है। जो लगातार महामारियां फैलती चली जा रही हैं, क्या इसका संबंध उससे भी है? तो आप कहेंगे कि हाँ, उससे भी है। क्या खाद्य सुरक्षा और पोषण से भी है? तो डेफिनेटली जंगल का संबंध उससे भी है, अगर खाद्य सुरक्षा और पोषण से है तो सीधी सी बात है कि इसका संबंध गरीबी से भी है। तो आप सोच करके देखिए कि जंगलों का संबंध हमारे जीवन के कितने विविध पक्षों से है। तो आप इसे इस रूप में लार्ज करके देखें, और मुझे लगता है कि वनों का जो रोल है हमारे जीवन में उससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित ही हैं, तो उस पर ज्यादा बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप जानते हैं कि हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होने जा रही हैं। इसके लिए दो स्टूडेंट्स ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनमें एक हैं रामचंद्र विट्ठल पांडे, जो जालना महाराष्ट्र से हैं, और कुमारी काजोल, जो सुपौल बिहार से हैं। तो रामचंद्र और काजोल, आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और बातें होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।